भी है एक कहानी इस जीव के भ्रमण की, लंबी है एक कहानी। एक दिन जाएंगे सब, राजा हो या हो रानी, आए विदा की बेला, आए विदा की बेला, तो कोई न रोक पाए सांसों की टूटी माला, अपने हुए पराए सांसों की टूटी माला, अपने हुए पराए। इस पुण्य के उदय से नर्तन मुझे मिला था, कुछ पुण्य के उदय से नर्तन मुझे मिला, यही तो सिलसिला था। ऐसे रतन को पाकर, ऐसे रतन को पाकर क्यों सागर में डाल आए सांसों की टूटी माला, अपने हुए पराए सांसों की टूटी माला, अपने हुए पराए। जाता है वक्त पंकज, सामान सफर का कर ले, बहती है ज्ञान गंगा, गागर तू अपनी भर ले। जाने मिले कि ना मिले, जाने मिले कि ना मिले, ये बात फिर दोबारा सांसों की टूटी माला, अपने हुए पराए। गुरु की टूटी माला, अपने हुए पराए। बोलिए जैन धर्म की।
धर्म सभा का प्रारंभ हो, दिव्य ज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कन्हैयालाल सुमत कुमार सोनम ट्रेडर्स को। श्री
मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान डमोताहि जाते वे अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ जीवन तीर्थंकरों का होता है, जो अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बनते हैं। कोई तीर्थंकर कैसे बन पाता होगा, कितनी पवित्र भावनाएं जो अपने पूर्व जीवन में संचित करनी होती होंगी, उन पर हम विचार कर रहे हैं। उन भावनाओं में से एक भावना भक्ति की भावना भी है। भक्ति का स्वरूप और भक्ति का ढंग जितना स्पष्ट हमें होगा, हम उतना ही अपनी भावनाओं को भक्ति के माध्यम से पवित्र बना पाएंगे। इसलिए कल हमने भक्ति के स्वरूप और भक्ति कैसे की जाए इस पर विचार किया था। हम पूज्य पुरुषों के प्रति जो भावों की शुद्धि के साथ अपना अनुराग व्यक्त करते हैं, वो भक्ति है। हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं, उनके ही गुणों का चिंतन करते हैं और उनके जैसे गुणों के पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये भक्ति करने का ढंग है। भक्ति हमारे भावों को निर्मल बनाती है। भगवान हमारे भावों को निर्मल बनाने में सिर्फ कारण बनते हैं। कोई ये समझे कि जिसकी भक्ति की जाती है वो अपने भक्ति करने वाले को वरदान देता है, या जो उसकी भक्ति नहीं करते हैं वो उन्हें अभिशाप देता है, तो ऐसे किसी भगवान में हमारा विश्वास नहीं है जो वरदान और शाप देते हो। न पूज्यार्थस तो वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, पुनातु चित्तम दुरितान जनेभ्या। भगवान, आपकी पूजा करने से आप प्रसन्न होकर हमें वरदान नहीं देते। जो आपकी पूजा नहीं करते उनसे नाराज होकर आप उन्हें अभिशाप नहीं देते। तब भगवान ही पूछ लेते हैं कि तो फिर हमारी पूजा क्यों करते। किसी व्यक्ति से कोई स्वार्थ सत्ता हो तो उसकी पूजा प्रशंसा की जाती, उसका सम्मान और आदर किया जाता, भैया। और या फिर जो आदमी जरा टेढ़ी प्रकृति का हो, उपद्रवी हो, तो फिर उससे बचने के लिए लिखा है कि अच्छा कार्य करने से पहले खल आदमी को प्रणाम करो और आगे बढ़ो, नहीं तो उपद्रव करेगा। जो कुछ बिगाड़ कर सकता है उसको भी समझा बुझा कर रखने के लिए थोड़ा बहुत आदर सम्मान उसका भी किया जाता है, लेकिन जिससे बिगाड़ की कोई संभावना नहीं जिससे अपना कोई स्वार्थ नहीं सधने वाला, उसकी भी पूजा कर रहे हैं, तो उत्तर आचार्य समंत भद्र स्वामी देते हैं कि भगवान आपको तो मैंने भगवान इसलिए माना है कि आप हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमें वरदान नहीं देंगे, और हम पूजा नहीं कर पाए तो आप हमसे नाराज होकर हमारा बिगाड़ नहीं करेंगे, इसी गुण के कारण तो हमने आपकी पूजा शुरू की है, और आपकी पूजा करने से हमें एक ही लाभ है, पुनः तु चित्तम दुरितान जनेभ्या, जो मेरे भीतर मन में मेरे भावों में जो विकृतियां हैं, जो मलिनताएं और कलुषताएं हैं, उन सब से मेरे मन को और मेरी भावनाओं को आप निर्मल बना देने में कारण बनते हैं, मेरे पूजा और भक्ति का उद्देश्य यही है। वंदे तद्गुण लब्धि, हम तो अपने आराध्य की आराधना ही इसीलिए करते हैं कि उनके जैसी वीतरागता, उनके जैसी गुणों की संपदा हमें प्राप्त हो। हमारी पूजा का उद्देश्य तो, हमारी भक्ति का उद्देश्य तो यही है। ऐसी भक्ति ही हमारे लिए संसार से मुक्ति में कारण बनती है, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में, यहां तक कि सुपर कल्याणकारी तीर्थंकर पद को भी दिलाने में वही भक्ति कारण बनती है। अनंत भगवान की भक्ति का स्वरूप कल हमने समझा था, उनके दर्शन करना, बाह्य स्वरूप का दर्शन ही नहीं, उनके अंतरंग का स्वरूप का दर्शन करना, उस दर्शन से मिलने वाले वीतरागता के संदेश को लेना और उस संदेश के अनुरूप अपने जीवन को निरंतर परिष्कृत करने का पुरुषार्थ करते रहना, ये अनंत भगवान की भक्ति का स्वरूप है। आचार्य भगवंत भी अनंत भगवान के बाद धर्म शासन की प्रभावना करने में निमित्त बनते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों की भक्ति भी तीर्थंकर पद पाने में कारण बन सकती है। धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर हैं, लेकिन तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए धर्म की प्रभावना करने वाले आचार्य हैं। धर्म शासन के नायक तीर्थंकर हैं, तो उस धर्म शासन को गति देने वाले आचार्य भगवंत हैं। वे चतुर्विध संघ का संचालन करते हैं, उन्हें मुनियों के पिता के समान माना जाता है। ऐसे आचार्य भगवंतों के प्रति भी भावों की विशुद्धि पूर्वक अपना अनुराग व्यक्त करना, उनके गुणों से अपने जीवन में वैसे ही गुण लाने की निरंतर भावना रखना, ये आचार्य भक्ति है। लेकिन आचार्य भगवंतों का स्वरूप क्या है? उस स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए पहले स्वरूप को समझना तो जरूरी है। जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और अपने शरण में आए जीवों को भी पंचाचार का पालन कराने में सहयोगी बनते हैं, वे आचारी कहलाते हैं। आचरति आचार्यन्ति वा इति आचार्यः। जो स्वयं आचरणवान है और अपनी शरण में आए हुए जीवों को भी आचरण की शिक्षा ही नहीं, उन्हें आचरण के पालन करने के निर्देश देकर के सहयोगी भी बनते हैं। मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले को सबसे पहले यह पढ़ाया जाता है कि सबसे बढ़िया मैनेजिंग डायरेक्टर अगर कोई हो सकता है तो वो कौन हो सकता है? जो ये कहे कि मैं जो कहता हूं वो करो, वो सबसे घटिया मैनेजमेंट करने वाला और जो ये कहता है कि मैं जो करता हूं वो करो, वो सबसे अच्छा मैनेजमेंट करने वाला है। सारी दुनिया क्या कहती है, मैं जो कहता हूं वो करो। आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, मैं जो करता हूं वो करो, मैं पहले करता हूं, तुम मुझे फॉलो करना चाहो तो करो, वैसा ही तुम भी करो। ये आचार्य भगवंतों की सबसे बड़ी विशेषता है, वे पुल के समान नदी को पार करने में सहयोगी नहीं बनते, वे नाव के समान नदी को पार करने में सहयोगी है। पुल से भी नदी पार की जाती, लेकिन पुल वहीं का वहीं रहा आता है, और नाव में बैठ करके जो नदी पार करता है तो नाव स्वयं उस पार जाती है, और जो बैठता है सहारा लेता उसको भी उस पार ले जाती है। वे महानाविक हैं, इस भाव सागर से पार उतारने में आचार्य भगवंतों की यह विशेषता है। हम उनसे दो चीजें सीख पाए, पहली चीज कि जो कुछ भी करो उसे ही दूसरे से करने के लिए कहो, जो स्वयं नहीं करते उसे दूसरे से करने के लिए कैसे कह सकते हैं, तो स्वयं करो फिर कहो तो उसका असर भी ज्यादा होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है उनकी वाणी का। और दूसरी विशेषता यह है कि स्वयं संसार से पार होने के रास्ते पर चलकर संसार से पार हो, और जो सहयोगी जो तुम्हारे साथ हो उसे भी सहयोग दो पार होने में। आज धर्म ध्यान में एक दूसरे का सहयोग देने वालों की संख्या अल्प है, संसार के कामों में एक दूसरे के सहयोगी बनने वाले बहुत हैं। आचार्य भगवंत ये संदेश दे रहे हैं, हम उनकी भक्ति करके ये संदेश ले लें कि हमेशा जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चल करके उनका सहयोग करो। और एक और विशेषता आचार्य भगवंतों की होती है, वे अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दोनों देते हैं, अनुग्रह भी करते हैं और निग्रह भी करते हैं। इतनी क्वालिटी है, और आठ गुण अलग से हैं आचार्य भगवंतों के, उन पर अपन विचार करेंगे। दीक्षा देना यानी इनिशिएशन ऑफ सीक्रेट्स, रहस्य की शुरुआत करना, किसी के भी जीवन में भेद विज्ञान की शुरुआत में सबसे अधिक निमित्त बनते हैं तो आचार्य भगवंत ही बनते हैं। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के बिना भेद विज्ञान किसी को हुआ नहीं ना होगा। जब तक अरंत सिद्ध भगवान के प्रति भक्ति, आचार्य उपाध्याय और गुरुजनों के प्रति अनुराग नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन की और भेद विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति जिन शासन में दीक्षित नहीं हो सकता। तो दीक्षा जो है वो भेद विज्ञान की शुरुआत का नाम है। अकेले वस्त्र उतार के रख देना और मुनि बन जाना ये बाह्य में दीक्षा की विधि है, लेकिन अंतरंग में इस देह से पृथक आत्मा की अनुभूति की शुरुआत करने का अनुष्ठान है दीक्षा। उस दीक्षा को देने वाले जिस वेश से भगवान भगवान बनते हैं, उस वेश को दिलाने में कोई कारण है अगर, तो वो आचार्य भगवंत है। जब दीक्षा देकर के आचार्य महाराज नैनागिर में और ऊपर पर्वत पर पहुंचे थे, हम लोग प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए, सन 1982 की बात है। आने वाला है वो समय, बहुत स्मरण आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि अपनी दीक्षा के दिन का हमेशा याद रखना, ताकि संसार के प्रपंच के बीच भी तुम्हारा वैराग्य ज्यों का त्यों बना रह सके। वैराग्य को बढ़ाने वाला था कि संसार की इतनी आसक्ति के बीच वो दिन कैसा क्षण था वो, जबकि संसार से विरक्ति हुई तब ऊपर जाकर के इतना ही कहा था आचार्य महाराज ने, आज भी याद है कि देखो बाहर से जो कुछ भी किया जा सकता था अपने समान बनाने का कार्य था वह भी मैंने कर दिया, अब अपने परिणाम संभालना तुम्हारा काम है। बाहर से जिस वेश से भगवान भगवान बने हैं वो वेश मैंने तुम्हें दे दिया, अब अपने परिणाम स्वयं संभालना, उसमें कोई किसी का सहयोगी नहीं बन सकता। जीव स्वयं अपने उपादान को जागृत करे तो कोई सहयोगी बने, बना ले हुए तो बनता है, बाकी ऐसी वो दीक्षा है। और कदम कदम पर शिक्षा देते हैं, यही उनका अनुग्रह है। और अनुग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, वे अपने आचरण से निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। लोग तो कह कह कर करवाते हैं काम, आचारी भगवंत की उपस्थिति ही शिष्य के जीवन को परिवर्तित कर देती है। जैसे कि कक्षा में गुरुजी के आते ही सारी कक्षा के बच्चे जो थोड़ी देर पहले किसी को डस्टर फेंक के मार रहे हैं, किसी को चाक फेंक के मार रहे हैं, कोई किसी से हो हल्ला कर रहा है, सब शांत हो जाते हैं। क्यों? उनकी उपस्थिति मात्र ही उन्हें अनुशासित कर देती है। वे गुरुजी अलग हैं जो स्कूल की कक्षा में प्रवेश करके फिर डंडा उठा के तीन बार पटक के कहते कि हम आ गए, हल्ला नहीं करो। उनकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं किया। अगर उपस्थिति का एहसास करे कोई तो परिवर्तन अपने आप ही घटित होता है। ऐसे वे आचार्य महाराज हैं जिनका अनुग्रह उपकार है कि उनकी उपस्थिति से ही शिष्य अपने जीवन को अनुशासित कर लेते हैं। एक बार आचार्य महाराज सन 1984 में खड़े होकर के हाथ जोड़े और अपने तखत पर प्रतिक्रमण कर रहे थे। हम लोगों ने धीरे से जाके देखा कि हो गया क्या प्रतिक्रमण, तो देखा तो दंग रह गए कि आचार्य श्री तो खड़े होकर के कर रहे हैं, अभी तो रोज बैठ के करते थे। तो जब प्रतिक्रमण हो गया, भक्ति हो गई, तो हमने पूछ ही लिया कि महाराज आज तो आप खड़े होकर प्रतिक्रमण कर रहे थे, क्या हम लोगों को भी ऐसा ही करना है? तो हंसने लगे, बोले हम खड़े होके जब करेंगे जब तो तुम बैठ के करोगे, हम बैठ के करेंगे तब तो तुम लेट के करोगे। फिर हम जब अधिक करेंगे तब आने वाली परंपरा थोड़ा बहुत करेगी, और हम ही थोड़ा बहुत करेंगे तो आने वाले लोग तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये अनुग्रह है, वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने आचरण को कैसे ऊंचा उठा करके लोगों को प्रेरणा देनी है उनके जीवन से, क्योंकि उनने किसी को प्रतिक्रमण करते समय बैठे बैठे टिके हुए देख लिया होगा, तो आप उसको कैसे टोकें, मुनि को कैसे टोक सकते हैं सहसा? तो लेकिन उनके समझाने का ढंग कि हम तो खड़े होके कर लेते हैं, तुम्हें अगर प्रेरणा लेनी हो तो ले लो, कि देखो हम तो बैठे हो टिके टिके कर रहे थे, महाराज को देखो कि खड़े होके कर रहे, अब ले लो प्रेरणा लेना चाहो, क्योंकि ये तो स्वाधीन है मोक्ष मार्ग, इसमें किसी से कहने की सुनने की कोई बात ही नहीं है। कहने सुनने की तो घर तक सीमित रहती कि भैया जो करो, भैया जो करो। यहां पर तो अपना अपना कल्याण करने के लिए जीव निकला है, तो अपने कल्याण की जिम्मेदारी उसकी स्वयं है, दूसरा तो सिर्फ अपने जीवन से उसे प्रेरणा दे सकता है। वही काम आचार्य भगवंत करते, और निग्रह करने में भी अत्यंत कुशल होते। निग्रह करना मतलब आप मनमानी करोगे तो अब हम आपके ऊपर अपना उपकार करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं, हम उपकार तो आपके ऊपर करेंगे लेकिन हमारे उपकार का ढंग बदल जाएगा। निग्रह में भी उपकार छिपा हुआ है, देखिएगा आप। अनुग्रह तो उपकार है ही, वे निग्रह करते हैं अर्थात उस शिष्य के प्रति जो कि विपरीत आचरण करने लगता है, अत्यंत उदासीन वृत्ति धारण कर लेते, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम अविनयेषु माध्यस्थ भावम, जो विनयवान नहीं है, जिन वाणी गुरु और आगम के विरुद्ध अपने आचरण को बना लेता, उससे कुछ नहीं बोलते, आशीर्वाद भी नहीं देते, लेकिन द्वेष भी नहीं रखते। हाँ, ये ध्यान रखना, प्यार नहीं देते तो द्वेष भी नहीं रखते, माध्यस्थ भाव, आपको जैसा करना, भगवान हमारी क्या गलती हो गई, कुछ नहीं बोलेंगे, तुम स्वयं खोजो क्या गलती हो गई, तुम स्वयं आलोचना करो, तब फिर मैं कहूंगा कुछ। इतनी विशेषता, निग्रह करने की विशेषता सबके भीतर नहीं होती, अवॉइड कर देना, उपेक्षित कर देना, ये बहुत आसान है, निग्रह शब्द रखा, अर्थात उसे मार्ग देने के लिए ऐसा आचरण करना जिससे कि उसे ठीक ठीक बोध हो जाए। उपेक्षा कर देने से तो वो विचलित हो सकता है, तो विचलित भी नहीं होने देना है, उसे संभालना भी है साथ में, और उसे ठीक दिशा पर लगाना भी है। इतना विवेक, इतनी जागृति आचारी भगवंतों के भीतर होती, ये सारे गुण हमने अपने आचारी महाराज में स्पष्ट देखे हैं। आप सब से भी कोई चीज छिपी हुई नहीं है, सब परिचित हैं आचारी महाराज के उस आचरण से, कि कितना उनका व्यवस्थित अपना स्वयं का अनुशासन है, और उनकी उपस्थिति मात्र ही बल्कि उनकी परोक्ष उपस्थिति भी शिष्य के लिए मार्ग दिखाने वाली, प्रत्यक्ष उपस्थिति ही नहीं, परोक्ष उनका स्मरण भी मन को अत्यंत निर्मल और अनुशासित बनाने में कारण बनता है। अब उनके और जो आठ गुण होते हैं जिनसे कि हम शिक्षा लेकर के, क्योंकि हम उनके प्रति भक्ति रखते हैं, तो जिसके प्रति भक्ति रखते हैं उसके गुणों का चिंतन करना, उसके गुणों का स्मरण करना, उसके जैसे गुणों को अपने भीतर लाने के लिए हमेशा प्रयत्न करना, यही तो भक्ति का स्वरूप है। अकेला ऐसा थोड़ी है कि महाराज की जय, बस हो गई भक्ति हो गई, और जोर से उनने कही माइक पे, सभी आवाज नहीं आई, हाँ तो और जोर से चिल्ला लो, कछु नहीं होने वाला, भीतर से आवाज आनी चाहिए, हृदय की आवाज हृदय तक पहुंचती है, वाणी तो थोड़ी दूर तक ही आवाज दे सकती है। तो भक्ति में तो उनके गुणों का हमेशा स्मरण चिंतन और वैसे ही गुणों की प्राप्ति का भाव बना हुआ हो, अत्यंत स्मरण करने मात्र से हृदय गदगद हो जावे, उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने की भावना तो बहुत बाद की है, उनके गुण का स्मरण आ जाने पर हृदय गदगद हो जावे, शरीर रोमांचित हो जावे, वाणी और कंठ अवरुद्ध हो जावे, तब वो भक्ति आंतरिक भक्ति कहलाएगी। अपन सबकी भक्ति तो आंतरिक कमती है, बाहरी दिखावा ज्यादा है। हाँ, बुरा नहीं मानना, अब है तो है, अब क्या करते, अब उसमें क्या करते, अब आदत वैसी डली, अब बदल लेंगे आदत, अब समझ में आ गई कि जब बाहरी अकेली भक्ति है, एक ही आदत बहुत पड़ गई अपन को, अब थोड़ी उस आदत से और आगे बढ़ो, बाहरी भक्ति तो बहुत अच्छी है लेकिन भीतर तक उसकी आवाज पहुंचनी चाहिए, भीतर तक भी उसकी छाया पहुंचनी चाहिए, बाहरी भक्ति की अंतरंग में भी हमारे और ऐसे निर्मल भाव आना चाहिए कि मैं उन आचार्य महाराज का शिष्य हूं, या कि मैं मेरे आराध्य वे हैं, ऐसा स्मरण आ जाए तो क्या होता है? एक व्यक्ति बताते जो वर्णी जी के बहुत निकट रहते थे, कहते आज वर्णी जी नहीं है, फिर भी जब हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे यहीं कहीं से वर्णी जी कह रहे हों कि काय भैया तुमने ऐसो करो, मतलब तुमसे तो हमें ऐसी आशा नहीं थी, ऐसी आवाज आती है, आती अपन को आती, आने लगे तो अपनी भक्ति सार्थक हो गई। कितनी निकटता है कि जब भी कहीं कुछ मन में विचलन हुआ तो जैसे कोई कह रहा हो कि काय भैया तुम ऐसो कर रहे, अरे दुनिया करे तो करे, तुम तो नहीं करो। इतना कहने से बहुत होता है। अपने परिणाम अपने आप संभाले जा सकते हैं गुरुजनों के स्मरण मात्र से। आचार्य भगवंत आचारवान होते हैं, वे आधारवान भी होते हैं, दो गुण एक साथ। आचारवान होना अर्थात स्वयं आचरण का पालन करना, और आधारवान होना यानी दूसरे को भी, और तो बाकी छोड़ो और उठाया और चल दिए। हम लोग भागे भागे, आचार्य आप कहां जा रहे हैं? चलो शिखर जी के दर्शन करके आते हैं। अरे इधर ईसरी बाजार से, बोले हाँ एक रास्ता है चलो, इतने बोलते हैं बस, इतने एक रास्ता है चलो। तो बस सब 11 पीछी थी उस समय, 11 नहीं 14 लौटे थे, 11 14 पीछी थी उस समय 1980 में, 1983 में जब ईसरी बाजार में, चतुर्मास के पहले की बात है, अप्रैल की। तो चले वहां से 10 किलोमीटर पड़ता नीमिया घाट, ईसरी बाजार से नीमिया घाट के पीछे से पहाड़ चढ़कर के पहुंचा जाता है कहां, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक, और वहां से जाओ फिर गणधर भगवान तक, और फिर वहां से लौटो पार्श्वनाथ भगवान, और फिर नीचे उतरो फिर आओ ईसरी बाजार। इतना मामला था शाम तक का, बताया नहीं प्रोग्राम, ये तो शाम को पता लगा कि ऐसा प्रोग्राम था। हाँ तो सुबह सुबह पहुंचे नीमिया घाट पर, मंदिर था छोटा सा, भगवान का दर्शन किया, वहां से फिर चढ़े और आचार्य महाराज और सारा संघ दर्शन करके 3:30 बजे और फिर नीमिया घाट वापस लौटे। 3:30 बज गए थे, बीच में सामायिक भी करिए, आप जाने सोचिए कि काकर हुई है सामायिक करिए, बड़ी जल्दी चिंता हो जाए दूसरे के बारे में। हमने ऐसे कही कि नहीं तो चिंता हो गई हो कि महाराज ने कहा चलते ही चलत रहे होंगे, नहीं चले सामायिक भी करी भैया। फिर 3:30 बजे लौट के आए तो नीमिया घाट में सब आहारचर्या हुई, 2 वेलाओं में से 1 वेला में मुनि महाराज आहारचर्या करते हैं, सुबह की वेला में नहीं करी तो दोपहर की वेला में उठते हैं। उठे 3:30 बजे आहारचर्या करके वहां से चले 4:30 बजे, 9-10 किलोमीटर 1.5 घंटे के भीतर 6 बजे पुनः ईसरी बाजार। अब वहां पर वर्णी जी अपना माथा रखे आचार्य महाराज के चरणों में और अत्यंत विहल हो गए। सारा दिन उनका बहुत मुश्किल से बीता था, क्योंकि कह के तो गए नहीं संलेखना कराएंगे, ऐसा तो आशीर्वाद दे दिया और बीच में छोड़ के चले गए। और कहां चले गए कुछ कहा नहीं, कब तक आएंगे, तो विहल तो होगा ही कोई भी हो। तो आचार्य महाराज के चरणों में माथा रख के कहा कि आप हमें ऐसे बीच में छोड़ के मत जाया करिए, हमने अपना जीवन आपको सौंपा है, अब इसको संभालना आपके हाथ में है, बताइए। ये है आचार्य महाराज का आधारवान होने का गुण, जहां शिष्य उनको अपना आधार मान रहा है कल्याण का। उनने नहीं कहा कि हमें मानो, शिष्य कह रहा कि आपका ही आधार है मुझे इस संसार से पार होने में। तब आचार्य महाराज का वाक्य देखिएगा कि वर्णी जी संलेखना तो अंतरंग के परिणामों से होगी, मैं तो निमित्त मात्र हूं, सो अपने परिणाम आप संभालो। एक तरफ सहयोग भी है, दूसरी तरफ निष्प्रहता भी है, वरना अपन किसी को सहारा देते हैं तो कर्तापने का अभाव आए बिना नहीं रहता कि मैं ही कर रहा हूं उसका कल्याण। अरे नहीं भैया, जीव अपनों कल्याण अपने हाथ से करता है, हम तो सिर्फ उसमें निमित्त हैं। इतनी निष्प्रहता, ये है आधारवान होने के साथ साथ आचरणवान होना। आचरणवान तो बहुत हैं, आधारवान भी बहुत हैं, लेकिन दोनों की संयुक्त गुणवत्ता आना आसान नहीं है। फिर कहते हैं व्यवहारवान और प्रकर्ता दोनों ही होते हैं। व्यवहारवान यानी जो भी शिष्यों को दोष हो गए हैं उन दोषों से कैसे मुक्त किया जाए, तो प्रायश्चित सूत्र इत्यादि के जानकार होते हैं। ये व्यवहारवान होना है। आचार्य महाराज का ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। थोड़ा सा हो सकता है कि रोज के समय से 5-7 मिनट ज़्यादा हो जाएं, आकुलता नहीं करना, क्योंकि 8 ही गुण जब हो जाए हैं जब छोड़ेंगे। पहले कह दिया भाई, नहीं तो बात खो आप कहो कि समय होगा। तो छोटे छोटे से उदाहरण हैं आचार्य महाराज के जीवन के हैं। मेरा मन भी आपको उन सब चीज़ों से अवगत कराने का है। आप कई बार कहते कि आप सुनाइएगा, तो ऐसा अवसर जब है तो अपन यही समझ लें कि आचार्य महाराज का ही आज अपन याद स्मरण कर रहे हैं। प्रायश्चित देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रायश्चित दंड नहीं है, किसी के दोषों के लिए उसे दंडित करने की विधि नहीं है। प्रायश्चित उसे उसके दोषों से मुक्त करने की विधि है। अब कैसे देंगे? तो जब आलोचना करता है शिष्य जाकर के, तब प्रायश्चित देते, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। और फिर देखना मजा, आचार्य महाराज सुनाते थे, सन 1985 में कहा था कि देखो हमें तुम लोगों के लिए दोषों का निवेदन करने पर प्रायश्चित देना पड़ता है। प्रायश्चित देने का काम कठिन है, विकल्प होता है, लेकिन हमें वेतन भी तो उसी का मिलता है। ये भी कहते हो कि हमें वेतन भी इसी का मिलता है। कैसे? जैसे ही शिष्य प्रायश्चित ग्रहण करके और जैसे उपवास दे दिया और दिन भर का कायोत्सर्ग दे दिया प्रायश्चित स्वरूप, तो उपवास पूर्वक कायोत्सर्ग में लीन है शिष्य, तब आचार्य स्वयं उठ करके जाते हैं देखने के लिए कि प्रायश्चित कैसे कर रहा है। और प्रायश्चित ठीक ढंग से कर रहा हो अगर शिष्य, तो उस ध्यान में लीन शिष्य की 3 प्रदक्षिणा देकर प्रणाम करके वापस आते हैं कि देखो मेरे प्रायश्चित देने का विकल्प करना पड़ा, तुम तो प्रायश्चित करके निर्विकल्प हो गए। मुझे तुम्हें प्रायश्चित देने का विकल्प करना पड़ा और तुम प्रायश्चित ग्रहण करके निर्विकल्प, तुम निर्विकल्प होना ही सबसे श्रेष्ठ है। इतना बड़ा काम है, ऐसा व्यवहारवान आचार्य महाराज का आचरण होता, प्रकरता होते हैं। इतना ही नहीं, संघ पर विपत्ति आवे तो उससे रक्षा करते हैं सारे संघ की। अब ये 4 ही बता पाएंगे क्योंकि लग रहा है कि बहुत समय हो जाएगा। 4 में तो हमें 40 घटनाएं याद आ गई। एक संघ है आचार्य महाराज की चर्चा में, जय एक तो वही आ गई तुरत ही कि जैसे संघ की रक्षा कैसे करते हैं, वो घटना भर सुनाता हूं, फिर अपन बैठेंगे, फिर आचार्य महाराज के गुणों पर विचार करेंगे। ईसरी बाजार से चतुर्मास करके 11 नवंबर को निकले, 9 महीने रहे थे ईसरी बाजार में, 16 फरवरी को पहुंच गए थे 1983 को और 11 नवंबर तक रहे थे। वहां से 11 नवंबर को निकल करके 325 किलोमीटर 10 दिन में यात्रा करके और बेलगछिया पहुंच गए थे कलकत्ता। वो कलकत्ता में 10 दिन रुक करके वहां जो भगवान पार्श्वनाथ की सवारी निकलती है कार्तिकी पूर्णिमा पर, वो देखी थी। धर्म की प्रभावना का एक ढंग वो देखा था, उसके देखने की लालसा थी आचार्य श्री को, सारे संघ को दिखाने की, ताकि अपने धर्म के प्रति गौरव उत्पन्न हो। सवारी क्या निकलती है, सारी व्यवस्थाएं शासन के द्वारा होती हैं, ट्रामों की लाइनें कट कर दी जाती हैं, सब ट्रैफिक रुक जाता है और फिर निकलती है। 2-3 किलोमीटर में तो सामान ही सामान होता, सोने चांदी के अष्ट मंगल द्रव्य और 1008 चांदी की पताकाएं, 1008 लोकर लेकर के निकलते हैं। अद्भुत है, हम तो पूरे वर्णन ही नहीं कर सकते उसका। और उस सब के बीच में जो खबर छपी थी दूसरे दिन, वो जरूर बताना चाहूंगा कि अपार वैभव के बीच 14 निर्ग्रंथ साधुओं पर हजारों लोगों की आंखें टिकी थीं, उस दिन लोगों ने संसार के वैभव पर दृष्टिपात ही नहीं किया, वे तो वीतरागता को देख रहे थे। ये वहां के बहुत बड़े न्यूज़पेपर में समाचार था दूसरे दिन। तब देखा था दोनों ही कि एक तरफ अनंत भगवान के धर्म की प्रवर्तन की क्षमता और आचार्य भगवंत की वीतरागता का प्रभाव। और फिर वहां से लौट करके आ रहे थे, जब आई गए थे, हाँ उसके बाद का है, आकर के खंडगिरी उदयगिरी 1.5 महीने तक वहां रहे, 3 स्टेट पार की थी, MP से जाकर के बिहार, बिहार से फिर वेस्ट बंगाल, वहां से फिर उड़ीसा, और उड़ीसा से फिर जब चले जा रहे थे रायपुर की तरफ, तब वहां बीच में एक अनुगुल और एक वरगढ़, दो स्थान थे, तो उसको हम लोग गड़बड़ कहते हैं, बरगढ़ नहीं कहते उसको, गड़बड़। वहां पर क्या हुआ कि मुझे जंगल में समय अधिक लग जाता था, मेरे साथ एक और महाराज थे, समता सागर जी महाराज, हम दोनों पीछे रह गए, सारा संग तो आगे निकल आया। अब पीछे रह गए तो संग के साथ में तो और बहुत श्रावक थे, जय जयकार करते हुए ले जा रहे थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। 10 मिनट हो चुके थे उसके बाद हम दोनों जन निकले, तो उन लोगों के भीतर आक्रोश तो था ही, वहां तो उन्होंने कभी इस तरह नग्न अवस्था में देखा ही नहीं, तो 50 लोग सामने खड़े दिखाई पड़े। मुझे उसी समय स्ट्राइक हुआ कि कुछ ना कुछ विपत्ति है। महाराज जो साथ में थे उनसे कहा कि सावधान रहें, इनकी जो स्थिति देखने में ठीक नहीं लग रही। निकट पहुंचे और उन 50 लोगों ने घेर लिया, घेर करके जो भी उन्हें करना था, आप इतने जय जयकार करते, हमने दोनों चीजें देखी हैं, जय जयकार भी और मार पीट भी। हाँ, ये नहीं समझना, उपसर्ग तो कभी भी आ सकता है, तो उपसर्ग आया, दोनों जन खड़े हो गए हैं, एक हाथ उनका उठ पाया, उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, वो सब चुपचाप खड़े, उतने में तो श्रावक भी आ गए, और 5-10 मिनट में जो कुछ घटित होना था सब घटित हो गया, और हम पुनः उपसर्ग का निवारण जान करके आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच गए। तब उन्होंने इतना ही कहा कि दिन भर आज मौन रहना, अभी और संघ पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए कुछ मत बोलना। सारे संघ को मौन दे दिया गया, सब शांत बैठे हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि किसी से कुछ कहेंगे क्या हुआ तो निकल सकता है कि मेरे साथ उनने ये किया, तो विपत्ति आ सकती। लेकिन आहार इत्यादि की चर्या हुई, 12:15 बजे भक्ति कर रहे थे, सब शांत हैं, मौन हैं, आचार्य महाराज भी चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, और 12:15 बजे आकर वे ही लोग जिन्होंने 9 बजे और इस तरह अपना आक्रोश व्यक्त किया था, वे आचार्य महाराज के चरणों में माथा रखे हैं कि हमारी गलती हुई जो हमने साधु के ऊपर हाथ उठाया, और सब चीज आसानी से दूर हो गई। भी वहीं खड़ा था, मेरी गलती कि मेरे मुंह से भी निकल गया कि हां महाराज, हां आचार्य श्री। श्रावकों को तो कुछ नहीं कहा, मुझे कहा कि यही सिखाया था। अब मैं तो चकित, मैंने इसीलिए तुम्हें अध्यात्म पढ़ाया था, आत्मा की अनंत शक्ति को भूल गए और छोटे छोटे से मंत्रों की सहायता लेने लगे अपने प्राण की रक्षा के लिए। अब तो, और पीछे आचार्य श्री ने बाजू में दबाई, कमंडल उठाया, चलो और आचार्य श्री आगे आगे पूरी 14 महाराजों की लाइन उनके पीछे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, आंख उठा के देखेगा ही नहीं, नीचे दृष्टि करके जहां तक मैं चलूं वहां तक चलना, और चल पड़े। हमने आज भी वो दृश्य ध्यान में है, ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं, इतनी इससे भी कई गुनी भीड़ चारों तरफ है, लेकिन जैसे कि पानी में से काई फट जाती है, ठीक इसी तरह से आचार्य महाराज सामने हैं और पूरी लाइन पीछे है। ऐसे उस भीड़ के बीच में से ऐसे जाते थे तीर के नुमा, और चले जा रहे हैं, दोनों तरफ भीड़ ऐसे हट जाती, पूरा रास्ता 3 किलोमीटर तक कहीं सिर नहीं उठा के देखा, चलते चले गए, सब तरफ शांत, सब चुप खड़े हुए, कोई की किस जरा भी कुछ कहने की कुछ करने की। 3 किलोमीटर के बाद जयकारा लगाया गया, आचार्य श्री ने स्वयं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय, पीछे मुड़ के देखा, मुस्कुराए, फिर आगे चल गए। कौन सा वाला मंत्र पढ़ा होगा, आत्मशक्ति आत्मबल और वीतरागता, ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये है संघ की रक्षा करने का उनका अपना दायित्व। एक आचार्य भगवंत, जैसे कि एक पिता और मां अपने बेटे की रक्षा करके और उसे बड़ा करते पाल पोस के, उतना ही बड़ा कार्य, उससे भी कई गुना बड़ा कार्य आचार्य भगवंत करते हैं कि मोक्ष मार्ग पर पढ़ा लिखा करके और बड़ा करके आरूढ़ करते हैं। बताइएगा, वो तो संसार बढ़ाने के लिए है सेवा, और ये संरक्षण मोक्ष मार्गी का है, ये विशेषता ऐसी आचार्य भगवंतों की होती है। हम उनके गुणों का स्मरण करें, चिंतन करें, उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए भावना भाएं, यही उनके प्रति भक्ति है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, यज्ञ की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जब विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ, हो अर्ध निशाता सन्नाता वन में वनचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तत्व शयन दीपक पर तुम वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों घड़ियों में, अंतर जाना करती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई हो जग को देवी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणियां, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु पर प्रणाम, नित्यातम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो भानु सेवकानी है, छाहु द्रव्य जान वेखो बंद विधि भान वेखो
को सतर पिछानवे को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य उरयानी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है।
वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदी पशु धूप फल अर्घ कई।
हवन मंगल गान रवा कुले जिन कहे मुनि राजवान।
ओम ह्रीम परम पूज्याचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के पावन चरण अरविंद को अनर्घ्य पद प्राप्त है।